ओम शांति। आज की सभा में आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। हम सभी भट्टी में आते हैं लक्ष्य लेकर के बाप समान बनने का, और जब बाप समान बनते हैं तो साक्षात कुर्मूर्त भी बन जाते हैं। तो इसी विषय पर आज भाई साहब प्रकाश डालेंगे, साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनने की सहज विधि और पुरुषार्थ। आदरणीय भाई साहब, बचपन से ही इस ब्रह्म कुमारी ज्ञान से परिचित है। 1968 में आपके परिवार में गीता पाठशाला चलती थी और आप पढ़ाई करते इस ज्ञान मार्ग में चले। 1986 से आप पढ़ाई के बाद रेगुलरली इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बने, और 1995 में आप मधुबन मुख्यालय में एज ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में। आप कैड प्रोजेक्ट की संयोजक एवं संचालक भी है। करीब 10,000 जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन सभी का आपने ट्रीटमेंट किया इस कैड प्रोजेक्ट के द्वारा, और 14 बार इस कैड प्रोजेक्ट में जो भी भाई बहने आए हैं वो सभी अव्यक्त बाप दादा से भी मिलन किए हैं। सो भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते डबल डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर भी है तो जिस्मानी डॉक्टर भी है, सभी दिलों को ठीक करते हैं। तो आज हम सभी साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनने की सहज विधि और पुरुषार्थ के ऊपर जानेंगे आपकी अनुभव से। हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी को।
ओम शांति। साक्षात बाप समान साक्षात मूर्त बाप समान, या कहें बाप समान साक्षात मूर्त बन, साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि एवं सहज पुरुषार्थ क्या है इसका। देखिए, अगर हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी तो सुनी है, दादियों से हमने बहुत सुना, बड़ी दादी से और दादी, सभी दादियों के मैं, मुझे बहुत सौभाग्य मिला दादियों के नजदीक रहने का। जब से 95 में, जब से मैं यहां मधुबन में रहा, सभी दादियों की सेवा करने का मौका मिला और जाना ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत गहराई से। 2 साल 8 महीने दादी की जो बड़ी बेटी थी पुट्टू दादी, एक तो निर्मल शांत दादी थी यहाँ पर, एक हमारे पास, 2 साल 8 महीने हॉस्पिटल में रही। तो रोज उनसे सुबह शाम हम अलग से भी बैठते, घंटा घंटा बैठ के बाबा के बारे में जानते थे, बाबा का जीवन पहले वाला और ज्ञान में आने के बाद और कैसे कैसे बाबा की स्टेज बनती गई। जब से साकार बाबा में शिव बाबा की पधरामणी हुई, या कहें जब से लेखराज दादा में शिव बाबा की पधरामणी हुई और ब्रह्मा बाबा बने, पहले दिन से ही बाबा कैसे बन गए थे, बाबा से सबको ही साक्षात्कार होता था, चाहे उनकी उनके बच्चे थे, लौकिक बच्चे थे, युगल थी, या क्लास में आने वाली भाई बहन थे जो अभी हमारी दादियां हैं, तो सभी बाबा से फरिश्तेपन का और श्री कृष्ण कर्मातीत स्थिति का और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। किसी को लगता ही नहीं था कि ये वो पुराने वाले बाबा है, सबको लगता था ये अलौकिक पर्सनैलिटी है। तो ब्रह्मा बाबा का शुरू से ही पाठ चला, साक्षात बाप समान और साक्षात्कार मुहूर्त का पाठ चला। बच्चों को आज तक भी ब्रह्मा बाबा 69 में अव्यक्त हुए, दिन रात ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने मस्तक में, पहले तो अपनी सूरत में, अपनी मूरत में, मस्तक में, नैनों में, मुख में और चलन में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा ने शिव बाबा को समा दिया। शिव बाबा तो बाबा के अंदर आते थे कि तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, वो जो है जैसे ही एकदम बाप समान बन गए। निरंतर श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रहे। चाहे वो रात में जाओ, चाहे दिन में जाओ, सुबह जाओ, जब जाओ देखो बाबा, तो बाबा, वो बाबा अव्यक्त, मतलब बाबा एकदम संपूर्ण अवस्था ही दिखाई देती। कभी किसी ने बाबा का पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखा। और हम बच्चों का पुरुषार्थी स्वरूप क्यों है? अभी भी बाबा जब हम बच्चों को देखते हैं, बाबा तीन स्वरूप हमारे देखते हैं। कौन कौन से? किसी भी बच्चे को देखते हैं, एक तो हमारा वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, और एक अंतिम फरिश्ता स्वरूप या कर्मातीत स्थिति वाला फरिश्ता स्वरूप। हर बच्चे का, हम में से जितने भी बैठे हैं और जितने भी ब्राह्मण है, 10-15 लाख ब्राह्मण है रेगुलर, और उन सभी का, यही नहीं कि किसी का, किसी थोड़े से आत्माओं को नहीं, हम सभी का तीन स्वरूप शिव बाबा देखते हैं, बाप दादा देखते हैं। एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा अंतिम कर्मातीत सो फरिश्ता स्वरूप। हम सभी फरिश्ता बनेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो हम में से 1000 वाट का बल्ब जैसा, कोई तो सर्च लाइट जैसा बनेगा, कोई 1000 वाट के बल्ब, कोई 500 वाट का बल्ब, कोई 100 वाट का बल्ब, कोई 50 और 60 वाट का बल्ब, कोई 40 वाट का, पर वही उनकी संपूर्ण स्थिति होगी। तो हम सबके सब कर्मातीत भी बनेंगे और फरिश्ता भी बनेंगे, और फिर भविष्य में देवी देवता भी बनेंगे। तो बाबा हमें, बाबा हमारे सभी के तीन स्वरूप देखते हैं, वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, भविष्य कर्मातीत सो फरिश्ता स्वरूप, और तीसरा कौन सा स्वरूप? तीसरा भविष्य हमारा देवी देवता स्वरूप देखते हैं। जैसे माँ को छोटे माँ को अपने छोटे बच्चे का बचपन याद आता है ना, बचपन भी याद आता है, और अभी की अवस्था भी नजर आती है, और भविष्य भी नजर आता है। ऐसे ही बाबा को हमारा तीनों ही स्वरूप दिखाई देता है। अब हम ऐसा क्या पुरुषार्थ, अब देखें, अगर सबसे इजी रास्ता कौन सा, अगर हम देखें तो वर्तमान जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, और ब्रह्मा बाबा ने इतना निरंतर पुरुषार्थ किया, श्वासोश्वास किया, कि बाबा इतने आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार सपूत बच्चे रहे शिव बाबा के, कि बाबा ने अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने संस्कारों को एकदम संपन्न और संपूर्ण सत्व प्रधान बना दिया, और वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पुरानी 5 तत्वों के देह को छोड़ करके और पिछले 53 सालों से कहां बैठे शिव बाबा के दिल तख्त पे बैठे। यहां बाबा अकाल तख्त नशीन बन के रहे, तो बाबा के दिल तख्त पे बैठे। सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन बाप दादा का, शिव बाबा का दिल तख्त है, और ब्रह्मा बाबा उस दिल में। आज्ञाकारी बच्चे कहां रहते हैं, सपूत बच्चे कहां रहते हैं? दिल तख्त पे रहते हैं, माँ बाप के दिल में रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पहला वो बच्चा रहा जिसने शिव बाबा के दिल, शिव बाबा को अपने दिल में समा लिया और शिव बाबा के दिल में जाके विराजमान हो गया। अगर हमें भी ऐसा बनना है, तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को हूबहू फॉलो करें, फॉलो फादर करें, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में, हर सेकंड ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, तो क्या होगा? हम भी ब्रह्मा बाप समान। देखो आज भी देखें, अगर मैं तो सारे विश्व में कहां कहां जाना हुआ, बाबा के घर में तो मधुबन देखो, चार धाम देखो ना, या ज्ञान सरोवर में जाओ, अपने शांतिवन में बाबा कमरे में जाओ। आप बाबा कमरे में जाके देखते तो बाबा क्या लगता है? आज भी बाबा के बाबा कमरे में जाके बैठते हो ना, क्या लगता है? बाबा हमसे बात कर रहा है। आज भी बाबा को देख करके साक्षात, आज भी बाबा साक्षात मूर्त और साक्षात्कार, आज भी जरूरी कि हम बाबा कमरे में जाएं, आज भी बाबा के साक्षात्कार सारे विश्व में आत्माओं को होते हैं। तो बाबा ने तो अपना काम किया कि तो फिर उसके बाद चलो, बाबा को हमने नहीं देखा। हालांकि जब हमारे माता पिता ज्ञान में आए तो उसमें बाबा थे कि तो हम मधुबन नहीं आए थे, हमारे माता पिता ही मधुबन में नहीं आए, पापा आए कि तो जब कि तो हमने देखा दादियों को, दादी प्रकाशमणि जी को देखा, दादी जानकी, दादी निर्मल शांता, दादी मनोहर दादी, शांतामणि दादी, विश्वतन दादा, चंद्रमणि दादी, शीलेंद्रा दादी, और कितनी दादियों को देखा, उनके अंग संग रह करके देखा कि वो दादियां भी बाप समान बन गई थी। आज हमारी रतनमणि दादी है, उनसे मिलने जाता हूं, उनको देखने जाता हूं, एकदम जैसे भले शरीर में शरीर बीमार है, पुराना है, 98 इयर्स का है, शरीर में अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कर्म भोग, क्या कहें, कर्म भोग तो क्या कहेंगे, शरीर के रोग या तकलीफें आती हैं उम्र के अनुसार। दादी ऐसे पर, हमेशा दादी, अभी हार्ट का प्रोग्राम चल रहा है अभी, तो दादी की तबीयत थोड़ा दो तीन दिन से ठीक नहीं थी, तो भी दादी कहती, बहन ने पूछा कि दादी आप हार्ट के प्रोग्राम में चलेंगी? हाँ चलूंगी। दादी को मतलब ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर भी दादी मतलब उस देवभान से उपराम है और मुस्कुराती रहती है। हमें भी लगेगा दादी की तबीयत खराब है, किंतु दादी को अपनी तबीयत खराब नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति, उपराम स्थिति, जब हम साक्षात्कार मूर्त की बात करते हैं, बाप समान साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर कोई इच्छा ना हो, दातापन की स्टेज हो, ये अंतिम स्टेज है हमारी, साक्षात्कार मूर्त स्टेज हमारी अंतिम स्टेज है, साक्षात मूर्त स्टेज हमारी अंतिम स्टेज है। तो अगर हमारी, आप में से कितने साक्षात्कार मूर्त बनना चाहते हैं बाप समान, जो साक्षात्कार मूर्त बनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। देखो बाबा देखो ऊपर ऊपर पूरा हाथ उठना, आधा मन आधा बनना चाहते हैं, पूरा बनना चाहते हैं, वेरी गुड। अगर हमारी साक्षात्कार मूर्त बनने की इच्छा है, हमें ऐसी प्रेरणा आती है कि हम भी बने बाप समान, सबसे पहली जो बात है वो क्वालिफिकेशन है कि हमें क्या बनना पड़ेगा, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा वाला कभी भी साक्षात मूर्त नहीं बन सकता, बाप समान साक्षात मूर्त नहीं बन सकता, बाप समान साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकता है। जब तक हम कोई देवता ही, जब तक हम देवता सदा दाता नहीं बनेंगे बाप समान, तब तक हम ऐसा नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा कैसे बने? बाबा ने निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहे हर संबंध से, हालांकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई सैंपल नहीं था, तो भी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से ऐसे कंबाइंड हो गए और सदा कंबाइंड रहे। मुरलीधर और मुरली दो चीज का प्यार बाबा का वंडरफुल रहा, वही चीज हमने दादियों में देखी, बड़ी दादी में देखी, जानकी दादी में देखी और दादियों में देखी, अभी अपनी जतन दादी में देखते हैं, मुरलीधर और मुरली, बस बाबा 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 और मुरली। मुझे आज भी याद आता है कि दादी, बड़ी दादी ने मुझे बोल के रखा था कि जब भी आपको रोज मुरली के बाद कम से कम 5 मिनट मेरे पास बैठ के जाना है, चाहे कोई काम हो चाहे नहीं हो, चाहे मेरे को देखना हो चाहे नहीं देखना, पर आपको 5 मिनट मेरे साथ बैठना है। और मैं मुरली के बाद रोज दादी के पास जाता था, और दादी कई बार तो बैठे थे, कुछ भाई बहन बैठे होते थे, कई बार दादी अकेली ही बैठी होती थी, और जब अकेली बैठी होती दादी मुझसे कुछ ना कुछ मुझे कहती थी, कुछ ना कुछ सिखाती थी। तो एक बार दादी ने कहा, ऐसे ही पूछा कि गुप्ता जी ये बताओ अष्टचन कौन बनेंगे। तो मैंने कहा दादी आप बने, ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मम्मा बनेगी, आप बनेंगे, दादी चंद्रमणि बनेगी, जो उस समय दादियां थी ना, मैंने तभी की 95-96 की बात है, तो और दादियों का नाम गिनाए। पर क्या दादी कहते उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, दादी ने पता क्या कहा, दादी ने कहा अष्टतन वो बनेंगे जिनको, जिनकी दिल में, जिनकी बुद्धि में सदा श्वासों श्वास बाबा और मुरली, जिनकी हर श्वास में बाबा और मुरली बसती रहती है, जिनको हमेशा बाबा याद रहता है और जिनको हमेशा मुरली याद रहती है। बाबा ने क्या कहा वो याद रहता है, बातें याद नहीं रहती है। बाप याद रहता है और बाप की बातें याद रहती है, बाप की मुरली याद रहती है, बातें दुनिया की बातें याद नहीं रहती, वो अष्टतन बनते हैं। तो एक दिन में कितने सांस लेते हैं, एक बार मैंने काउंट करके देखा, लगभग हम 16,000 सांस एक बार एक दिन में लेते हैं, पूरे दिन रात मिलाकर। तो हर श्वास में मेरे बाबा समाया हो, श्वासों श्वास बाबा की याद, जैसे ऑटोमेटिक अनंत नाद के रूप में बजता रहे बाबा, बाबा स्मृति के साथ अर्थ सहित, वो ऑलमाइटी ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, मैं आत्मा अपनी मन बुद्धि, मेरी मन बुद्धि बस उसमें समाई रहे, किसमें, ज्ञान के सागर में, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में, अतीन्द्रिय सुख के सागर में, आनंद के सागर में, आठों शक्तियों के सागर में, निरंतर उसमें समाये रहे, बाहर निकले ही नहीं। ऐसी आत्माएं, वो अभी अब दादियों के पास जाके, अभी तक दादी हमारी एक ही दादी है, पर बाकी दादियों के पास जब जाते थे दादियां बस एक ही लगन, बस कोई बात हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हो, यज्ञ में बहुत समस्याएं, इतना बड़ा परिवार है, इतने देशों में फैला हुआ है, कितनी सारी टीचर बहने हैं, कितने सारे सेंटर्स हैं, कितने सारी, आप समझ सकते हैं, एक मकान को, एक बिल्डिंग को संभालना कितना मुश्किल होता है, एक चार व्यक्ति का परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है, यहाँ पर इतना बड़ा परिवार संभालना, दादियां तो उसके निमित्त, फिर भी दादी कभी भी उनको भारी नहीं देखा। तो दादियां उसकी साक्षात्कार, साक्षात एग्जाम्पल रही। और फिर दादी ने पूछा, अच्छा 108 की वाला में कौन आएंगे, तो मैंने कहा दादी आप बताइए। तो दादी कहती है जिनको कम से कम दिन में 100 बार बाबा और बाबा की मुरली याद आवे, आ सकता, पॉसिबल है, अगर हम 8 घंटे निकाल भी दें तो 1 घंटे में कितनी बार याद आना चाहिए, 6 बार, कम से कम 6 बार ना, हर 10 मिनट में बाबा याद आना चाहिए, बाबा की मुरली याद आनी चाहिए। और 16,000 में कौन आएंगे, क्योंकि राजा रानी 16,000 ही बनते हैं, राजयोगी है ना बच्चे, तो 16,000 में कौन आएंगे, हाथ उठाओ, अच्छा 108 में कौन आएंगे, वो हाथ उठाओ, 16,000 में कौन आएंगे, 16,000 में सबको हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि राज, हम प्रजा योगी की राजयोगी है, राजयोगी है ना, तो 16,000 में सबको हाथ उठाना नहीं उठाना चाहिए, 16,000 में कौन आएंगे, हाथ उठाओ, सभी को हाथ उठाना चाहिए, नहीं तो प्रजा में जाओगे क्या, हम प्रजा योगी है क्या नहीं? और 9,00,000 में कौन आएंगे, तो 16,000 में कौन आएंगे जिनमें कम से कम 8 बार मुरली पड़ते हैं, जो कम से कम बाबा 8 बार याद आता है, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल हमारा 8 बार बना हुआ है, हर पहर में 8 पहर होते हैं दिन में, 3 घंटे का पहर होता है, तो हर पहर में बाबा और बाबा की मुरली याद आती है। और 9,00,000 में कौन आएंगे, जो बच्चे टॉप प्रायोरिटी पे बाबा अमृत वेला करे, सबसे पहले उठते ही अमृत वेला पावरफुल योग करे, बीज रूप स्थिति का, बीज रूप बन के बीज रूप बाप से कंबाइंड हो जाए परम धाम में, और फिर समय पर मुरली, क्लास में आके मुरली सुने, 7 से 8 की मुरली होती है ना, वो मुरली सुने, अगर मुरली में 1 घंटा लेट तो सत्यु का 1 जन्म लेट, 1 जन्म मिस, और दो घंटा लेट तो बाबा की मुरली में लिखा हुआ है, दो घंटा लेट तो माने आपने नाश्ता करके आए, बच्चों को स्कूल भेज के आए और जिम्मेवारी पूरी करके नाश्ता करके आए, तो क्या दो जन्म लेट, 10 बजे आए तो 3 जन्म लेट। सुना माताएं भाई बहने सुन रहे हैं, 4 जन्म 4 घंटा लेट, 11 बजे आए तो 4 जन्म लेट, 12 बजे आए तो 5 जन्म लेट, और 1 बजे आए तो 6 जन्म लेट, और शाम को आए तो पूरा सत्युग मिस। क्योंकि पहले हमने और काम को प्रायोरिटी दी है, बाबा को प्रायोरिटी नहीं दी है। मुझे याद है जब 1986 से मैं रेगुलर स्टूडेंट बना, जब मुझे समझ आया, जब मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट मेडिकल साइंसेज में था, जब बाबा का सही समझ में, बचपन में समझ में नहीं आया था, भूख खाने का शौक था, दादियों से मिलने का शौक था, पांडव में जाते थे उनसे मिलते थे, टोलियां खाते थे, सौगात मिलती थी, है ना, वो सब करते थे, मेला देखते थे, 1973 का मेला, 81 का लाल किला ग्राउंड में मेला हुआ, वो सब करते थे, किंतु ये शौक नहीं था कि हाँ मुरली हम सुने या मुरली को समझें, ऐसा शौक नहीं लगा, वो 1986 में लगा। और जिसके तो जिस दिन से लगा तब से नियम बनाया कि मैं नाश्ता तब करूंगा, पहले मुरली अंदर जानी चाहिए, आत्मा का भोजन पहले मिले फिर शरीर का भोजन, तब से लेके आज तक ये नियम पक्का बनाया। आप भी ऐसा नियम करते हैं क्या पक्का, या मोबाइल पे मुरली सुनते हैं, टीवी पे मुरली सुनते हैं? तो अभी से नियम बना लेना, अगर आपको बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है तो ये हमारी, क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय दरबार है, वहां कोई भी बहन मुरली सुनाए, किंतु बाबा उस बहन के द्वारा ना खाली मुरली सुनाते हैं, उस बहन के द्वारा या भाई के द्वारा आपको पावर भी देते हैं, ताकि ये एक्चुअली वो स्टूडियो है, जैसे यहाँ गॉडलीवुड स्टूडियो ना, हम घर में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं क्या, पीस ऑफ माइंड के लिए, किसी टीवी के लिए, हम वहां जाके स्टूडियो में जाके बैठते हैं, वहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए वो सेंटर, वो रिकॉर्डिंग रूम है, स्टूडियो है, जहां पर मुरली आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर हमें बनना है बाप समान तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को नहीं देखा पर उसके बारे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, रोज मिलते हैं बाबा से, बाप दादा से रोज मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं, बाबा कितने दूर है हमसे, सोचा और पहुंचा, है ना। अगर आप दिल्ली से आए, दिल्ली अगर जाना हो, आपको अपने घर में जाना हो, सेंटर में जाना हो, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कितनी देर लगती है पहुंचने में, आप यहां बैठे बैठे जा सकते हैं, जा सकते हैं, यस, कितनी देर में, 1 सेकंड, सोचा और पहुंचा, नहीं देख सकते हैं वहां जाके अपने ड्राइंग रूम में क्या क्या है, टेबल कैसे है, सोफा कैसे रखा हुआ है, दिखाई देता है ना, शोकेश कैसा है, है ना, या आपके बेडरूम में अलमीरा कहां पर है, पैसे कहां रखे हैं, गहने कहां रखे हैं, दिखाई देता है ना। सेम वे अगर बाबा को हम अच्छी तरह से गहराई से महीनता से जानते हैं तो हम सूक्ष्म वतन को, मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में, परम धाम में, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है, साक्षात मूर्त बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहां पर है, ये जो 63 जन्म के पाप कर्म हमने किए हुए ना, ये बीच में बाधा है, इनको हमें विनाश करना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। जब तक हम इसको भस्म नहीं करेंगे तब तक हम, हमारे बीच में और इसमें दीवार है, हमारा जो देवी देवता स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न 16, क्योंकि हमें क्या बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, अभी बनना है। और जब हम, हमारा अंतिम स्वरूप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण 36 के 36 गुण, दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएं और हर गुण में हम 100% हो जाएं, उसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात देवान का अंश भी न रहे, देवान से जनित, देवान जनित जो हमारे अंदर चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, शक अनुमान पैदा होता है, आलस पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, बदला लेने की भावना पैदा होती है, जल्दीबाजी होती है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर होता है, कंपटीशन कंपैरिजन होता है, वो भी खत्म हो जाए, संपूर्ण देह अभिमान और देह भान का बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो उसे कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। और जब हमारे तो देह भान देह अभिमान रहेगा तो सब मर्यादाएं आ जाएंगी, जो हमारी मर्यादाएं अभी ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन अर्थात वैष्णव भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग सिर्फ, और दैवी गुणों की धारणा, 36 दैवी गुणों की धारणा, और हर गुण में 100%, तब हम ऑटोमेटिक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्योंकि जितनी भी मर्यादाएं टूटती हैं वो देवभान और देवभिमान से टूटती हैं। देवभान के स्वभाव संस्कार, ये 5 विकार देवभान के स्वभाव है, इनसे टूटती हैं। तो ये खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे और अहिंसा परमो धर्म। ये आपने सीक्वेंस है। अभी एक्चुअली हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, अभी हमारा पुरुषार्थ ये देवता स्वरूप का होना चाहिए। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता ब्राह्मण, फरिश्ता देवता, हमारे पास तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। जब हमारी मनुष्य की बुद्धि कैसी होती, हद की बुद्धि होती है, हद की बुद्धि, हद का मन और हद के संस्कार होते हैं। हद हद माना, हद क्या, हद का क्या अर्थ है, हद माना देहभान, जो असत्य है। योग माना कनेक्शन, किससे, सत्य से कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ। अगर हम सत्य से जुड़े रहे, आधा कल्प हम असत्य से जुड़े रहे, देवान सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य की परिभाषा है जो सदा है, इटर्नल है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता है, और सत्य कभी चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। अब हमारे हमारी बुद्धि में क्या रहा, हमारे मन में क्या रहा, संस्कारों में क्या रहा, आधा कल्प से हमारी बुद्धि में रहा, मन में रहा, संस्कारों में देवान रहा, देह अभिमान, मन रोल कॉन्शियस रहे, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या बहुत पढ़ी लिखी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, तो ये रहा, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहा, या अपनी जाति का अभिमान रहा, ये देह अभिमान है। देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान रहा, और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान रहा, ये क्या है, हद है। इसी से हम प्रभावित होते रहे, ऊपर नीचे होते रहे। किंतु तो ब्राह्मण, जब हम ब्राह्मण बने, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के तन के द्वारा सत्य की समझ दी, अर्थात ज्ञान दिया, ज्ञान में सत्य की समझ दी, तो हमारे अंदर क्या आया, हमारे अंदर आ गया बेहर की बुद्धि बन गई, जिसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो शिव बाबा ने हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमें क्या किया, हमें क्या दे दिया, शिव बाबा ने हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको क्या दे दिया, हमको रूहानी दृष्टि दी और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी, जो एक सेकंड में मुझे आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अब सूक्ष्म शरीर क्या चीज है, सूक्ष्म शरीर जो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां ना, बुद्धि तो दिव्य बुद्धि में जन्म मिलते ही, ब्राह्मण जन्म मिलते ही मिल जाती है। दिव्य बुद्धि क्या है, जिस बुद्धि में ये दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, बेहद का ज्ञान भरा हुआ है, सत्य की समझ भरी हुई है, एबीसीडी भरा हुआ है। एबीसीडी माना क्या, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना संबंध, और डी फॉर ड्रामा। हर बात में ये भरा हुआ मेरे अंदर, और मैं इस दिव्य बुद्धि को यूज करता हूं हर समय। वो है ब्राह्मण, जो निरंतर कभी भी आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करता। जैसे आज की मुरली में था, कई लोग पुरानी चीजों को यूज करते रहते हैं, वरदान में था ना, हम जो बाबा ने दिव्य बुद्धि उसको यूज ना करके आसुरी बुद्धि को, पुरानी बुद्धि को यूज करते रहते हैं। तो बाबा ने जो हमें दिव्य बुद्धि दी उसको यूज करना है। सच्चा ब्राह्मण वो जो श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में दिव्य बुद्धि को यूज करे, अर्थात इस ज्ञान को, सत्य की समझ जो हमें रोज बाबा की मुरली के द्वारा मिलती है उसको यूज करे, तो वो दिव्य बुद्धि फिर और ज्यादा दिव्य बनती जाती है। और ये दिव्य बुद्धि जब इसको हम बहुत ज्यादा, अर्थात ये मुरली ही क्या है, मुरली से ही हमें दिव्य बुद्धि मिलती है। जितना ये मुरली हमें, पहले 7 दिन का कोर्स क्या, इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में, और ड्रामा, सृष्टि रूपी इस ड्रामा की जियोग्राफी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इसके बारे में हमें सूचना, कर्मों की फिलोसफी के बारे में मिल जाता है। ये पढ़ाई, ये जो है एजुकेशन है, मुरली एजुकेशन है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर इंटरनेट से डेली अपडेट होता रहता है, तो जो बेसिक हमें एबीसीडी मिला मुरली कोर्स के द्वारा, ये उसकी अपडेशन होती है, डेली अपडेट होता था, नए नए सॉफ्टवेयर उसमें ऐड होते रहते मुरली के द्वारा। हमारी बुद्धि, हमारे मस्तक में कितनी है, 100 अरब 100 बिलियन कोशिकाएं हैं ब्रेन के निर्माण से, 100 अरब 100 बिलियन, और हर ब्रेन में क्या भरा हुआ, देहभान, हर सेल में क्या भरा हुआ, देहभान, बकायदा केमिकल है देहभान के, देह अभिमान, देखे संबंध संपर्क का भान, देखे पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार का भान। साक्षात्कार मुहूर्त बनने में क्या बाधा आती है, यही बाधा आती है। ब्रह्मा बाप से बनने में क्या बाधा आती है, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, ब्रह्मा बाप ने, दादी बताती थी, निर्मल शांता दादी और हमारी पुट्टू दादी बताती थी कि ब्रह्मा बाप ने 1928 से ही बाबा को, मतलब बाबा को जैसे संन्यास जैसे बेहद का वैराग्य हो गया था, बाबा चुप रहते थे, एकदम चुप रहने लगे, और 1932 की डायरियां जो मिली, बाबा की डायरी लिखी हुई ना हाथ से, तो बाबा क्या करते थे, अपने आप से बात करते थे, रोज दरबार लगाते थे, अपने कर्मेंद्र मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्र के दरबार लगाते थे, बात करते थे मन से, बुद्धि से, संस्कार से, आंखों से, नाक से, कान से, इन पांचों कर्मेंद्रियों से बात करते थे, उनका हालचाल लेते थे। तो बाबा अंतर्मुखी, पहला पहला बाबा ने जो अपनाया, शिव बाबा के आने से पहले भी, पधरामणि से पहले अंतर्मुखी बन गए। अगर यही हम, अगर इसकी विधि, सहज विधि क्या है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें इसको निकालने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का क्या था, नेपाल के राजा के पास, नेपाल के राज दरबार, उदयपुर के राज दरबार, जोधपुर के राज, जयपुर के राज दरबार, बड़ौदा के राज दरबार में बाबा का आना जाना बहुत था। तो बाबा देखते थे कि कैसे राजा अपने मंत्रियों से बात करता है, कैसे कर्मचारियों से बात करता है, तो बाबा ने ऐसे शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो पहले पहली बात है अंतर्मुखता। अगर हमको बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है तो हमें पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी का क्या मतलब है, अंतर्मुखता का मतलब है कि ये जो पांचों कर्मेंद्रियां, एक तो आंख, नाक, कान, मुख कहां पर है, चेहरे पे ही ना, मस्तक भी चेहरे पे ही है, तो मस्तक से मुझे क्या सोचना है, मस्तक में सोचने की शक्ति, ऐसा तो मन सोचने की शक्ति, किंतु सोचते किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा ना, मस्तक के द्वारा। तो मस्तक मेरा क्या है, मुझे मस्तक में मैं क्या सोचूं, अंदर सोचूं मैं कौन हूं, मेरा कौन है, असल में मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उससे क्या संबंध है, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की, बाप की, टीचर की, सतगुरु की, बंधु की, सखा, साजन, सज्जन और बच्चा, नो संबंध मुख्य, कैसे बाबा दिन रात मुझे पालना दे रहा है, एक एक संबंध की हम उसको सच्ची दिल से महसूस करें। जब कोई भी चीज को हम सच्ची दिल से महसूस करते हैं तो हमें ना खाली वो शक्ति मिलती है बल्कि अपनी कमी कमजोरी भी नजर आती है। वो मुझे उसको, उसकी अथॉरिटी बनने में मुझे क्या बीच में बाधा है वो समझ आती है। पर सच कहते हैं, पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य की समझ, ज्ञान की महीनता में चले जाओ। जब ज्ञान की महीनता में चले जाते हैं, मुरली के बाबा ने, मुझे याद है जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई, मुझे खुद को हार्ट की बीमारी 1996 में हुई नवंबर में, और जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई तो मुझे कहा कि आपकी हालत बहुत सीरियस है, आप दो साल मुश्किल से जी पाएंगे। तब बाबा से मैसेज मंगाया गया तो बाबा ने कहा, बच्चे ये तो आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए बीमारी आई है, ताकि आप जब अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो दूसरों को सिखा सकेंगे, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होने वाला था। और जब फिर बाबा ने कहा, बच्चे मुरली के एक महावाक्य को ये सोचो कौन कह रहा है, कोई मुरली का एक महावाक्य जब पढ़ते हो क्या क्या सोचो, पहले इसमें 10 बातें सोचनी है आपको, उस मैसेज में आया था 10 बातें, कौन कौन 10 बातें, कौन कह रहा है आपको, किसको कह रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है, किसको कह रहा है, उस आत्मा को जो कोटो में कोई है, मनुष्य से देवता बनने वाले। सोच रही, मुझे बाबा ने हार्ट की रिसर्च करी, निमित्त बनाया, तो उसको कह रहा है कि तुम पहले हार्ट को ठीक करना सीखो, क्यों कह है ना, उसको कह रहा है, और क्यों कह रहा है, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनाने के लिए कह रहे हैं, फरिश्ता से देवता बनाने के लिए कह रहा है। और फिर मुरली में आठ, हर महावाक्य में सात बातें समझो, मुरली का हर महावाक्य में गुह्यता बहुत है, बहुत रहस्य है, बहुत राज समाये हैं, महीनता है, सूक्ष्मता है और गुप्त है और सातवां अमूल्य है। ये सात बातें समझ के एक एक महावाक्य को पढ़ो तो चबाओ। जैसे बाबा ने उसमें एग्जांपल दिया, दादी दादी गुलजार ने मुझे फिर समझाया था कि अगर मान लीजिए दस दाने आप जीभ में रख लो गेहूं के दाने, आपको कुछ पता लगेगा? जब चबाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? उसका मिठास महसूस होगा। और चबा के उसको जब अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, वो मिठास को पहले महसूस करके जब अंदर कड़वा होगा तब थूक देंगे, जब उस मिठास को महसूस करेंगे तो अंदर ले जाएंगे, और जब अंदर ले जाएंगे तो पचेगा, उसके द्वारा जाके बॉडी हाथों में छोटी हाथ में जाके पचेगा और फिर उसका खून बनेगा, ताकत आएगी। इसी तरह से मुरली को खाली पढ़ लेना काफी नहीं है, मुरली सुनने के लिए नहीं है, बनने के लिए। ये होमवर्क है हमारा। अगर हमें मुरली को सचमुच में हमें इसके जैसा बनना है तो पहली चीज दिल में, दिल हमारी सच्ची और साफ होनी चाहिए, बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए और मन भी हमारा क्लीन और क्लियर होना चाहिए। जब तीन चीजें स्वच्छ, दिल सच्ची साफ माना, दिल सच्ची साफ माना जिस दिल में एक बाप के सिवा दूसरा कोई ना हो, सर्व संबंध जिसने बाप के बाप से अनुभव कर लिए हैं, अनुभव की अथॉरिटी बन गया है, कोई भी देह की, देह और देह की दुनिया कोई संबंध उसको याद ही नहीं आता है कभी भी, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कोई भी हो, बस एक नाम ही है जो उसको सदा एक ही बुद्धि में है, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इसे कहते सच्ची दिल, साफ दिल माना जिस मुरली, जिस दिल में एक बाबा के अलावा, बाबा की मुरली के अलावा को दूसरी कोई बात ना हो, अर्थात श्रीमत के अलावा मनमत परमत का अंश भी ना हो, वो है साफ दिल। जब ऐसी दिल होगी जिसकी, तो अपने अंदर जाके अंतर्मुखता माना, पहले अपने अंदर देखो कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है ना, और फिर उससे एक एक संबंध को गहराई से महसूस कर, सच्ची दिल से महसूस, वो मेरी माँ कैसे है, शिव बाबा मेरी माँ कैसे है, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे पालना दे रहा है, कैसे मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, रूहानी दृष्टि दे दी ताकि जो भी मेरे परिवार में है, लौकिक में है, सेंटर पे है, कोई भी है, उनको मैं रूहानी दृष्टि से आत्मा के रूप में देखूं, खुद को भी आत्मा के रूप में, दूसरों को भी, और दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट एबीसीडी को यूज करते हुए पास को फुल स्टॉप लगा के बिंदी आत्मा बन के, और मन 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 हमारा सूक्ष्म शरीर है, अभी मेरे मन में क्या भरा हुआ है, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान भरा हुआ। मन अभी मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल है, वो स्थूलता भरी हुई है, विनाशी चीजें भरी हुई है, सूक्ष्म शरीर मुझे बनाना है। जितना हम इस मुरली को पीसेंगे अर्थात रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, उतना क्या होता जाएगा, मेरा मन क्या होता जाएगा, उसमें पवित्रता आती जाएगी, मेरे विचार स्वचिंतन, स्वचिंतन से क्या होगा, शुभ चिंतन होगा, स्वचिंतन, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा उससे क्या संबंध है, और ड्रामा में मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो क्यों आई, समस्या आई, कोई मेरे को तंग कर रहा है, परिस्थिति है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे कर्मों का फल, तो पास को बिंदु लगा के बिंदी बन के और बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ, करंट आने लगती है। तो ये अपने आप को अंदर सोचना है, वो देखना है, आंखों से क्या देखना है उसी को, फिर आंखों से बाहर नहीं देखो, अंदर देखो, मैं कैसी हूं, मैं आत्मा कैसी हूं, मेरा बाप कैसा है, एक संबंध को देखो, मां के रूप में बाबा क्या, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, बाप के रूप में तीसरे नेत्र दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना दिया, सुदर्शन शिखरधारी बना दिया, और सतगुरु के रूप में क्या बना दिया बाबा ने मुझे, त्रिलोकी नाथ बना दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति का वसा दिया, मतलब वरदान दे दिया, मैं कभी भी सूक्ष्म में जा सकता हूं, परम नाम में जा, अभी विक्रम विनाश नहीं हुए तो भी बाबा ने मुझे मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया, फ्री वीजा दे दिया, जब चाहे सूक्ष्म में जाओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, और बीच बीच में सुखधाम का भी चक्कर लगा के आ जाओ, नहीं बंधु के रूप में बाबा, बड़े भाई के रूप में क्या किया, सारा बोझ मुझे दे दो, लौकिक अलौकिक जो भी जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं संभालूंगा, तुम हल्के हल्के होकर चलो। सखा के रूप में क्या किया, कहा क्या क्या दिया बाबा ने, शिव बाबा ने कहा तुम्हारी जो भी टेंशन है ना, जो भी समस्या है मुझे दे दो, कि दोस्त को सब बातें बता देते हैं ना, माता पिता को नहीं बताएंगे, भाई बहन को नहीं बताएंगे, किंतु दोस्त को बता देते हैं। तो दोस्त खुदा दोस्त के रूप में मुझे अपनी सब बातें सत्य रोज लिखो, रोज लिख के दो। और साजन के रूप में क्या किया बाबा ने, दैविक रूप से सजा दिया। साजन क्या करता है, सजाने का काम करता है ना। सजन ने क्या किया, जो भी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी रह जाती बाबा रोज उसको ऑपरेशन कर देता, निकाल देता है। और फिर बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। अगर 8 संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं ना, हम चलते फिरते उठते बैठते किसी भी देहधारी को यूज करने के लिए बाबा को यूज करना शुरू करते हैं, तो ये ऐसे अपने अंतर्मुखता। तो बाबा ने ऐसा शुरू किया कब से, शिव बाबा के आने से पहले। और हम करते हैं रोज आज से शुरू कर दो, ठीक है, शाम को रोज कचहरी लगाना। मैं रोज करता हूं, कितने साल, 27 साल से, जब से मुझे हार्ट की बीमारी हुई वहां मैंने सीखा अंतर्मुखता। तो ये फिर कानों से किसके सुनो, आत्मा की सुनो, बाबा की सुनो, बाबा क्या कहता है। एक एक संबंध से मुझे बाबा क्या कहता है, ड्रामा क्या कहता है, कर्मों के हिसाब किताब क्या कहता है। नाक से किसको सुनो, आत्मा के गुणों को सुनो, और कोई अवगुण है तो उसको भी सुनो कि मेरे अंदर यह अवगुण बाकी है, यह अवगुण बाकी, मुझे इसको निकालना है। मुख से क्या करो, टेस्ट किसका लो, आत्मा के गुण है ना, जो अभी तक गुण आए उनको टेस्ट करो, 7 गुणों को टेस्ट करो, कितने दैवी गुण है उनको टेस्ट करो, उस सर्वगुण संपन्न स्थिति को टेस्ट करो, 16 कला संपूर्ण स्थिति को टेस्ट करो, फरिश्ता स्थिति को टेस्ट करो, और फिर इस सब में कंबाइंड होकर बोलो। तो ये है अंतर्मुखता, पहला जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। फिर ब्रह्मा बाबा को 1974 में जब बनारस में थे, उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो पहले तो अगर हमको बनना है ब्रह्मा बाबा समान साक्षात्कार मुहूर्त बनना है कि मेरी बुद्धि में उसे बाबा समा जाए, शिव बाबा बाप दादा समा जाए, मेरे दिल में बाप दादा सदा समाये रहे, मस्तक में बाबा समाये रहे, आंखों में बाबा समा रहे, मुख में बाबा समाये रहे, बाप दादा समाये रहे, चेहरे और चलन में हर बोल में बाबा समाया हो। तो पहला साक्षात जो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ किया था। और फिर बाबा ने बेहर की वैराग्य वृद्धि, जब विनाश का साक्षात्कार 34 में हुआ, तो बाबा ने अंदर आकर के, ये दादी बताती थी कि बाबा ने अंदर आके अपने साझेदार को बोला, मेरे को अब और इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस करने में, मुझे कोड़ियों का धंधा नहीं करना है, ये दुनिया जाने वाली है, तुम हिसाब किताब कर लो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो। तभी बाबा ने पहले दिन ही उस 34 में जिस दिन हुआ, तो उसी दिन बाबा ने, उसी समय से बाबा झाटकू थे, ब्राह्मण जन्म जीवन मर्दीवा जन्म है, तो बेहर की वैराग्य, मतलब बेहर की वैराग्य वृत्ति बाबा तभी से आ गई थी। उसके बाद किसका साक्षात्कार हुआ बाबा को, फिर बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। एक बार चतुर्भुज का कुछ दिखाई दिया सिर्फ विष्णु, कि तू कुछ बोला नहीं, फिर बाबा ने, फिर दोबारा से हुआ कि तत्त्वम, फिर बाबा को सत्यु का साक्षात्कार हुआ स्वर्ग का। तो बाबा ने जब स्वर्ग का साक्षात्कार किया, तो बाबा को क्या हुआ, जब स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने कैसे उसको, बाबा को ऐसे आया कि तुम्हें ये दुनिया बनानी है, तो बाबा ने कहा मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बना सकता हूं। तो फिर शिव बाबा ने कहा कि मेरे को तुम्हारे द्वारा बनानी है। तो ये जो फीलिंग थी ना, करावन हार की फीलिंग, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा में आ गई। और फिर बाबा जब शिव बाबा की पधरामणी हुई, निज ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम, निज आनंद स्वरूपम शिवम शिवम, जब बाबा को पता लगा, वो अथॉरिटी विराट स्वरूप का अनुभव हुआ कि बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्ति, तो उसी समय बाबा ने क्या किया, अपना तन मन धन और संबंध समर्पण कर दिया। अगर हमें सचमुच में अपने विकारों को भस्म करना है, 63 जन्म के पाप कर्मों को भस्म करना है, एकदम क्लीन और क्लियर करना है, अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाना है, मन को क्लीन और क्लियर बनाना है, तो हमारी चार ही जगह हमारी बुद्धि जाती है, मन जाता है, कहां कहां पे जाता है, अपने शरीर में जाता है, अपने मन में, मन कहां कहां लगा हुआ है, देखे संबंध संपर्क में, देखे पदार्थों में, देवान के स्वभाव संस्कार कहां भरे, मन में भरे हुए हैं, और फिर धन में जाता है, और संबंधों में जाता है। तो चारों को बाबा ने समर्पण कर दिया, अपना पुराना तन बाबा की अमानत है, ये समझ लिया, मन भी बाबा की अमानत है और धन भी बाबा की, धन पूरा समर्पण करके माताओं का ट्रस्ट बना दिया और संबंध भी सारे बाबा को दे दिए, बाबा ही मेरा सब संबंधी है। फिर दोबारा कभी अपने युगल की तरफ या बच्चों की तरफ मेरेपन की दृष्टि से नहीं देखा, और ना बच्चों को महसूस हुआ ना युगल को महसूस हुआ ये वही वाला बाबा है, बाबा फिर वो पुराना वाला खत्म ही होगा। ऐसा ऐसा जब योग, तो अगर हम भी तब जब तक अपने तन को मन को धन को और संबंधों को बाबा को नहीं समर्पण कर देते, तब तक हमारे अंदर हमारी शिव बाबा हमारे दिल में आएगा नहीं और तब तक मुरली अंदर जाएगी नहीं। जब मुरली तब मुरली अंदर जाएगी तो बुद्धि हमारी क्या होगी, बुद्धि माना सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाएगी। जो आज कल का वरदान था ना, नहीं आज का काज का था ना, जो अपना जो था ना अव्यक्त इशारा, कल का और आज का सत्य को परखने, विवेक जागृत हो जाएगा, हम वाइज बन जाएंगे, तब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आएगी। और जब सही निर्णय करने की शक्ति, जो आज का अव्यक्त इशारा था, तब हम इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के अश्वेधी आत्मा बन के, बिंदी आत्मा बन के, और अपनी मन बुद्धि संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर, बुद्धि दिव्य बुद्धि उसका इंजन है सूक्ष्म शरीर का, मन सूक्ष्म शरीर है, और जो हम नई आदतें डाल रहे हैं, ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं और नियम है हमारे, उनको धारण करते जाने, वो हमारे संस्कार है, वो हमारे दिव्य संस्कार है, वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन सार रूपी बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंचते हैं तो बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करो, बाबा के साथ बाबा से सारी मुरली की बकायदा सारी, चाहे वो आपको मंथन विचार सागर मंथन जो किया ना, कुछ क्वेश्चन है बाबा से पूछो, मन में कुछ चल रहा है पूछो, और अपने शरीर में कुछ चल रहा है बाबा से बात करते हैं, रूढ़ियान करते हैं, परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है बाबा से बात करते हैं, और हमारे बिजनेस में धंधे जो भी हमारा काम है सेवा है उसमें कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन है तो बाबा से बात करो। जब बाबा से हम सब बातें, एक एक संबंध की अनुभूति, एक एक ज्ञान के पॉइंट की अनुभूति, पवित्रता, वो पवित्रता का सागर है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा मास्टर सागर है, उस पवित्रता के सागर में समा जाओ। क्या होती है पवित्रता, शांति क्या होती है उसमें समा जाओ, समाये रहो प्रेम के सागर में, सच्चा प्रेम क्या होता है उसमें समा जाओ, अत्यंत सुख के सागर में समाये रहो, आनंद के सागर में समाये रहो, सत्य को प्रकट शक्ति के सागर में समाये रहो, विस्तार यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या होती है, शिव बाबा उसकी अथॉरिटी है, ब्रह्मा बाबा उसकी अथॉरिटी है, उसमें समा जाओ, विस्तार को साधन करने की शक्ति, वही सर्व संबंध को महीन सार वाली याद बाबा की गोद में उसको महसूस करो, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। और जब ऐसे जब बाबा से सब 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 चीज भरपूर हो जाता है, हमारी बुद्धि मन संस्कार तीनों भरपूर हो गए, तब बीज रूप स्थिति मतलब अशरीरी आत्मा बन के वहां से भी समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में श्री बाप से कंबाइंड हो जाओ, तो क्या होता है, इतना करंट आने लगता है, बैटरी चार्ज होने लगती है, तो रियल पवित्रता क्या होती है, रियल शांति प्रेम सुख आनंद क्या होता है, आत्मा चार्ज होने लगती है। इंचार्ज का मतलब क्या है, जो निरंतर अपनी बैटरी को चार्ज करता रहे उसे बोलते हैं इंचार्ज। हम सब अपनी अपनी बैटरी को निरंतर चार्ज करते हैं, अंदर रह के अंतर्मुखी बनके अपनी बैटरी को चार्ज करते रहे, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो अपने इंचार्ज बन जाते हैं, किसके, मन बुद्धि संस्कार के, अपने कर्मेंद्रियों के, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, और तब अपने संबंध संपर्क में जहां भी अपने परिवार लौकिक में सेंटर में हमारा आसपास का वायुमंडल कैसा होता है रूहानियत वाला, हमारे पास सात सुरक्षा कवच बन जाते हैं, पहला ज्ञान का, फिर पवित्रता का, फिर शांति का, प्रेम का, सच्चे प्रेम का, सुख का, आनंद का और शक्तियों का, तो ये एक सुरक्षा कवच बन जाता है हमारे आसपास, और उसके बाद एक हीलिंग एनर्जी का सुरक्षा कवच बन जाता है। तो उस सुरक्षा कवच में जैसे वो कितना भी बढ़ा सकते हो, जितना आप इसका अभ्यास करते जाओगे अशरीर बन के अशरीर बाप का तक माइंड होने का, तो क्या होता है मेरे अंदर इतनी एंडोर्फिन निकल जाते हैं, एनकैफेलिन बन जाते हैं, कि मेरे पास जो शमालिक कर्म हो गए, मुझे कोई हार्ट की बीमारी है, या मेरे को पेट में दर्द है, मेरे गॉल ब्लैडर में तकलीफ है, किडनी में प्रॉब्लम है, या सांस की बीमारी है, या मेरी आंखों में बीमारी है, मेरे कुछ भी हड्डियों में तकलीफ है, उसका दर्द मुझे महसूस ही नहीं होगा। दर्द की मुझे महसूसता आएगी नहीं। तो इतनी करंट आ जाती है, इतना हल्कापन आ जाता है, अंदर से नेचुरल अफीम निकलती है। बाहर की अफीम तो नुकसान करती है, आदत पड़ जाती है, कि तो अंदर से अफीम निकलती है, तो बहुत हल्कापन। तो सारे शरीर कर्म भोग कर्म योग द्वारा चुप्त होते जाते हैं। सहन करने की शक्ति, सहन करके समाने की शक्ति भी आ जाती है, और सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। और भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि पाप 63 जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, इस जन्म में और पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, और फिर ये शक्ति आने से क्या होता है, सहयोग करने की शक्ति। जो आत्माएं हमें तंग करती हैं, हमारे साथ पेपर लेकर के आती हैं, उनको फिर उनको भी हेल्प करना, सहयोग करना, क्योंकि हमारे इससे हिसाब किताब है। जब तक उनको मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारे साथ और ज्यादा पेपर आएंगे। तो ये जब आठों शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं, तो सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। तो ये मैंने यहां बात करता कि पहले जब चारों चीजों को समर्पण कर दें, तो अंदर सहनशीलता आ जाती है। सहनशीलता जब चारों को समर्पण कर दिया, तो अब आपका योग लगने लगता है बाबा से, और निरंतर आप अंतर्मुखी होकर के बेहद की वैराग्य वृत्ति और समर्पणता से आपके अंदर करंट आने लगती है, सहन होने लगता है, तो सहनशीलता आ जाती है। जब सहनशीलता आ जाती है, तो आपके अंदर रूहानी फखूर आने लगता है कि बाबा मेरे साथ है। बाबा के साथ का अनुभव की अथॉरिटी बनने लगते हैं। जब अनुभव की अथॉरिटी बनने लगते हैं, तो हम रूहानी फखूर, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ऐसा फील होने लगता है बाबा हर समय मेरे साथ है, ईश्वर अपने साथ है, भगवान हमारा साथी है। गीत गाना नहीं, खाली प्रैक्टिकल में महसूस होने लगता है। जब ऐसा प्रैक्टिकल में महसूस होने लगता है, तो क्या होता है, हम कर्म योगी बन जाते हैं। हमारा हर कर्म में योग लगा रहता है। हम सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी और निरंतर योगी बन जाते हैं। जब इतना हमारा जब ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसे मैंने कहा, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, तब हमारे अंदर क्या होता है, हम सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, आठों शक्ति संपन्न बन जाते हैं, सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं, और तब हमारे अंदर त्याग होता है। ब्रह्मा बाबा का ये कदम था, सातवां कदम ये था ब्रह्मा बाबा का। तब त्याग, त्याग माना मैंपन, मेरेपन का त्याग। जब ऐसी स्थिति बनने लगती, कर्मयोगी बनने लगते हैं, हर समय बाबा को यूज करते हैं, तब हम जाकर के हमारे अंदर मैंपन मेरेपन का त्याग होता है। जब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है, तो फिर हमारी निराकारी अवस्था बनती है। अशरीरी अवस्था और निराकारी में फर्क है। अशरीरी अवस्था के द्वारा हम अपने विक्रम विनाश इस जन्म के और पिछले जन्म के करते हैं। पिछले जन्म के माना जो हमारा पिछला 63वां और 62वां, या कहें तो 84 और 83, बाकी जो 61 जन्मों के पाप कर्म है, वो जो पाप कर्म है हमारे, वो रहते हैं। वो जब निराकारी अवस्था, जब निराकारी बनके निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या जागृत हो जाते हैं। ज्वालामुखी माना पावरफुल तपस्या। अशरीरी बनके जब अशरीरी बाप को याद करते, तो हम निर्विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि हम सहन करके समा सकते हैं, सहनशीलता आ जाती है, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, रूहानी फखूर रहता है। क्योंकि जब निराकार त्याग करते हैं, तो उससे हमें निराकारी अवस्था, निराकारी से निराकारी बाप को कंबाइंड हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर तपस्या, ज्वालामुखी तपस्या से हमारे पिछले 61 जन्मों के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, और उससे हम निर्विकारी बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, देहभान खत्म होने लगता है। त्याग तपस्या सेवा है ना, नीचे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। मैंपन मेरेपन का त्याग, तो क्या बने, निराकारी। निराकारी बने तो निराकारी बनकर निराकारी बाप से परम धाम में कंबाइंड रहने लगते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या होती है, उससे संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। और जब संपूर्ण देवहान भी खत्म होता है, तो बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है ना, मेरे को नाम मान शान मिलेगी, मैंने कहा ना इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति। जब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, तो क्या होता है, तब हमारे अंदर हम क्या बनते हैं, निरहंकारी बनते हैं। स्वार्थ भाव की सेवा अहंकार पैदा करती है, नाम मान शान की इच्छा पैदा करती है, और तब जब हम निरहंकारी बन जाते हैं, तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तो हम बाप समान स्थिति बन जाती है। तब हम जो भी कर्म कर, सातों एनर्जी से बैटरी चार्ज होती, निरंतर चार्ज होती रहती है, विक्रम बिल्कुल खत्म हो जाते, पाप कर्म भस्म, कर्मातीत स्थिति आ जाती है और फिर हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं और फिर बाबा से उनसे बाबा से लगता कंबाइंड होने लगते हैं। फिर जो भी कर्म करेंगे ना, जैसे आपको याद आपको पता होगा एक इंजेक्ट कलर इंजेक्ट प्रिंटर होता है, उसमें चार कलर्स होते हैं, लाल, नीला, येलो और ब्लैक। किंतु जब हम प्रिंट करते हैं ना और एक जेट होता है, तो उस जेट में से क्या होता है, जब मैंने मान लीजिए मैंने एक फोटो बनाई, मूर्ति बनाई, चित्र बनाया, उसमें 50 कलर चाहिए, उन चार कलर से 50 कलर की प्रिंट आ जाता है। कैसे होता है, जब आत्मा में सात एनर्जी भर जाती है, कंबाइन जब निरंतर पावर हाउस से कंबाइन रहने लगते हैं तो सातों एनर्जी रहते हैं, हम जो भी सोचेंगे ना, देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, किसी से व्यवहार में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, चलेंगे, तो उसमें दिव्यता आ जाती है, सत्यता हमारे कर्मों से झलकेगी, पवित्रता, निर्भयता, क्योंकि बुद्धि हमारी परमधाम में लगी है, मन अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है सुखधाम में, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एक नामी आ जाती है ना, एकाग्रता आ जाती है, एकांतवासी, फिर एक नामी, फिर एकाग्रता, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर जाती है एक नामी के बाद वैध से एक नामी, फिर एकमत हो जाते हैं, अर्थात सब श्रीमत पे, ऐसे वायुमंडल में जाता है उसमें जो भी आएगा वो श्रीमत पे चलेगा, और फिर एकरस स्थिति हो जाती है। फिर जब एकरस होने के बाद सरलता आने लगती है, सरलता आने के बाद नम्रता आने लगती है, नम्रता आने के बाद दया आने लगती है, सबके ऊपर रहम, दया माना दूसरों के दुख देख करके उनको पुकार महसूस होती है, रहम, फिर रहम करना माना एक एक्टिव प्रोसेस है रहम, कि हमें इसके लिए कुछ करें, और करुणा जो है एक देने का प्रोसेस है, फिर बाबा से कंबाइन होकर देते हैं करुणा, और फिर जब दे रहे होते हैं तो क्षमा, फिर तुरंत हमेशा के लिए क्षमा देकर देते हैं, उदारता माना हम उनके अवगुणों को समा लेते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, और फिर मधुरता, उसके बाद मधुरता आती है, मधुरता माना हमारा देखना, हमारा बोलना, चलना, हमारे कर्म में सुनना भी मधुरता वाला होना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर धैर्यता आती है, धैर्यता से गंभीरता आती है, उससे रमणीकता आती है, उससे सहनशीलता आती है, और सहनशीलता से दृढ़ता आती है, और दृढ़ता से क्या होता है, फिर हमारे अंदर संतुष्टता आती है, सफलता, जैसे सफलता मिलती है संतुष्टता आती है, फिर हर्षित मुक्ता आती है, फिर निमित्त भाव आता है, निर्माण भाव, निर्माण भाव, निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, निर्माण माना निरंकारी, और फिर हमारा अंदर निर्मल स्वभाव बनता है, जब निर्मल स्वभाव बनता है तो हम क्या होते हैं, सब सम्मान में रहकर सबको सम्मान देने लगते हैं, और फिर हम आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनते हैं। आज्ञाकारी माना मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, हमारे मस्तक में, नैनों में, बोल में, हर चीज, चेहरे में, चलन में बाबा समा जाता है, और वफादार माना आज्ञाकारी माना सदा सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव, और वफादार माना मेरा तो शिव बाबा दूसरा, ईमानदार माना जो बात जैसी है बाबा, हर बात बाबा को रोज बताते हैं, बाबा ऐसा हुआ, बाबा जैसे छोटा बच्चा नहीं बताता माँ को, मम्मी ऐसे हुआ, मम्मी ऐसे हुआ, कुछ छोटी सी बात भी बताएगा, ईमानदारी, अंदर बाहर सेम हो जाते हैं, और फिर फरमान बरदार, तो बाबा के जो भी फरमान है उसको एक्यूरेटली फॉलो करते हैं। तो ये 36 गुण जो हमारे अम ब्राह्मणों के गुण, वही फिर सत्युग में दैवी गुण नहीं चाहिए, हमारे अंदर अब धारण होते हैं, और हर गुण को फिर 100% जब कर लेते हैं, हर गुण में जब 100% 16 कला बन जाते हैं, फिर देवान खत्म हो गया तो क्या बन गए, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारे चेहरे और चलन से बाबा का साक्षात्कार होता रहता है, हमारे फरिश्ता स्वरूप को भी साक्षात्कार होता है और हमारे देवता स्वरूप को भी साक्षात्कार होता है। तो ब्राह्मण क्या है, बेहद की बुद्धि वाले, और फरिश्ता कौन है, मनमना भव, बेहद की बुद्धि और मन वाले, जो ज्ञान को उसने मन के हर विचार में, भावना में, वृत्ति स्मृति में भर दिया है, वो है फरिश्ता। जैसे जैसे बढ़ते जाते उतना संपूर्ण फरिश्ता बनते जाते हैं, और जिसने फिर संस्कारों में भर लिया इस बाबा के ज्ञान को, बाबा से हर संबंध को भर लिया, आदत बन गई, संस्कार माना आदत बन गई, बाबा से हर समय कंबाइंड रहने की, कंबाइंड रह के देखने की, सोचने की, पढ़ने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की, जो ब्रह्मा बाबा की है, तो फिर हमारे जैसे बताया ना कलर प्रिंटर, फिर हमारे दैवी गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं, तो साक्षात्कार होने लगता है। जरूरी नहीं कि मैं अमेरिका में जाऊं, कहीं जाऊं, यहां बैठे बैठे आपके वाइब्रेशन उस बाबा के साथ सैटेलाइट से अपने आप चारों तरफ विश्व में जाने लगते हैं। जो भी आत्माएं बाबा को याद कर रही हैं, जो बाबा से किस पुकार उन आत्माओं की पुकार आप तक पहुंचती है और वहां बैठे बैठे उनको साक्षात्कार होता है। जो आपके भक्त हैं उनको आपका साक्षात्कार होता है, पास में आने वालों को भी और दूर 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 रहने वालों को। तो ये बहुत ही सहज विधि है और यही पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा के 8 कदम पक्के कर लो, अंतर्मुखता, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति, तीसरा तन मन धन और संबंध को समर्पण कर लो, फिर सहनशीलता और फिर बेफिक्र बादशाह और फिर कौन सा, फिर कर्मयोगी और फिर त्याग, किसका, मैंपन मेरेपन का त्याग। तो उससे निराकारी अवस्था, निराकारी बन के निराकारी भाव से कंबाइंड ज्वालामुखी तपस्या, उससे संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी बने तो बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, आपके द्वारा सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा हो जाती है, हर आत्मा को शांति और सुख का वरदान मिलता है। जब बीके हो चाहे नॉन बीके, दुनिया में कोई भी आत्मा किसी धर्म की भी हो, सबको सकाश मिलता है, करंट मिलती है और उसके द्वारा निरंकारी बनते हैं। और जब निराकार तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनते हैं, जब सब तरह से मोह खत्म हो गया, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर साक्षात्कार की स्थिति आती है। ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त साक्षात बाप बन जाते हैं। ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरी मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है, इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। Thank you. जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा जग के तुम्हें सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बनाते अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।